द प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी आज वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का लेख पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें वे ये दलील देते हैं कि हिंदी यूं ही लोकप्रिय नहीं हुई है, इसके लिए काफ़ी सरकारी जोर आजमाइश की गई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा या राष्ट्र की संपर्क भाषा के तौर पर स्थापित करने की कोशिशें नए सिरे से शुरू हो चुकी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से इस काम में तेजी आएगी, क्योंकि इसमें त्रिभाषा फॉर्मूले को जिस तरह बनाया गया है और जिस तरह से तीन में से दो भारतीय भाषा रखने की बात की गई है, उससे हिंदी का दायरा और बढ़ेगा। अभी तक गैर हिंदी भाषी राज्य सिर्फ इंग्लिश और अपने प्रदेश की भाषा का ही इस्तेमाल शिक्षा माध्यम के तौर पर कर रहे थे। तीसरी भाषा के भारतीय होने की अनिवार्यता से हिंदी को ज़्यादा जगह मिल सकती है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह ही चुके हैं कि संपर्क भाषा के तौर पर अंग्रेजी की जगह हिंदी आए, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। इन सब सरकारी उपायों के पीछे तर्क यह है कि देश में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, और इस नाते ये देश को एकजुट करने में सबसे सक्षम भाषा है। दूसरा तर्क यह है कि राष्ट्र एकता के लिए भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा तो होनी ही चाहिए। तीसरा तर्क यह है कि कब तक भारत में एक विदेशी भाषा इंग्लिश का बोलबाला रहेगा, देश अपनी जुबान में कब बोलेगा। ये तर्क आज के लिए नहीं है, बल्कि संविधान सभा से लेकर आज़ादी के बाद गठित राजभाषा आयोग और सरकार की नीतियों में भी ये तर्क बार बार सामने आते रहे हैं। ये तर्क भारत सरकार की भाषा नीति का भी आधार है। ये नीति आज़ादी के बाद से भी कभी बदली नहीं है। समस्या यह है कि यह भाषा नीति भारत की भाषा समस्या को हल करने में नाकाम साबित हुई है। भाषा समस्या से संबंधित विवादों में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, और राज्यों के बीच और राज्यों तथा केंद्र के बीच कई विवाद चल रहे हैं। 1965 में तो भाषा के सवाल पर देश में बड़े पैमाने पर हिंसा हो चुकी है। कई राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ, और खालिस्तान के अलगाववादी विचार की जड़ में भी भाषा विवाद ही रहा। अब जबकि भाषा का विवाद फिर से सिर उठा रहा है, तो राजभाषा नीति संबंधी ऊपर दिए गए तर्कों की जांच कर लेनी चाहिए, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। आज़ादी के बाद हुई पहली यानी 1951 की जनगणना में देश के 42% लोगों की भाषा हिंदी बताई गई, लेकिन ये आंकड़ा दो कारणों से बेहद भ्रामक है। इस 42% में पंजाबी, उर्दू, हिंदुस्तानी सब शामिल है। साथ ही इसी समय यह तय हुआ कि मैथिली से लेकर वज्जिका और मगही से लेकर भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, मारवाड़ी, निमाड़ी, रायपुरिया, गढ़वाली, कुमाऊनी, हरियाणवी से सब भाषा नहीं हिंदी की बोलियां हैं। बहरहाल अगली जनगणना 1961 में हुई, और जब पंजाबी और उर्दू को अलग से गिना गया तो हिंदी बोलने वालों की संख्या घटकर 30% रह गई। 1961 के 60 साल बाद यानी 2011 में जब जनगणना होती है तो हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़कर 43% पहुंच गई, यानी पंजाबी और उर्दू को बाहर गिरने के बावजूद हिंदी का दायरा तेजी से बढ़ गया। 1951 में चार भाषाएं तेलुगु, बंगाली, मराठी और तमिल 7% से ऊपर की कैटेगरी में थी। 2011 में इनमें से बंगाली के अलावा बाकी तीन भाषाएँ 7% से कम वाली कैटेगरी में आ गई। तमिल तो 5.7% पर सिमट गई। कन्नड़ और मलयालम बोलने वालों की संख्या भी कम रह गई। इसकी दो व्याख्याएं हो सकती है। एक तो ये कि हिंदी भाषी इलाकों में परिवार नियोजन अपेक्षाकृत फैल रहा है और यहाँ आबादी बढ़ गई, और उसी समय खासकर दक्षिण भारत में परिवार छोटे होते चले गए। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इस बीच सिर्फ आबादी नहीं, अन्य कारणों से भी हिंदी भाषियों की संख्या बढ़ी। मेरी मान्यता है कि आज़ादी के बाद हिंदी का विकास पूरी तरह स्वाभाविक नहीं है। हिंदी आज अगर पहले से ज़्यादा लोकप्रिय नज़र आ रही है तो इसमें सरकार का पैसा और प्रयास लगा है। हिंदी भाषियों की संख्या कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीके से कैसे बढ़ी, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही ये बात उभरने लगी थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजकाज की भाषा और संपर्क भाषा बनेगी। खासकर 1919 और 20 में गांधी जब कांग्रेस में शीर्ष नेता के तौर पर सामने आते हैं और कांग्रेस वकीलों और जमींदारों, उद्योगपतियों की पार्टी से आम जनता की पार्टी बनने की ओर बढ़ती है, तब से ही कांग्रेस की भाषा के तौर पर हिंदी स्थापित होने लगती है। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा नेता हिंदी भाषी इलाकों से आने वाले हिंदू थे, और वे हिंदी पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे। आज़ादी के आंदोलन में एक सांप्रदायिक अंतरधारा भी थी जो मुसलमान बनाम हिंदू के विस्तार यानी उर्दू बनाम हिंदी में हिंदी के साथ खड़ी थी। आज़ादी के बाद संविधान सभा में ये धड़ा और मजबूत हो गया क्योंकि उर्दू और बंगाली भाषी इलाकों का बड़ा हिस्सा भारत से अलग हटकर पाकिस्तान में जा चुका था। संविधान सभा में कांग्रेस से आए हिंदी भाषी क्षेत्रों के नेता प्रभावशाली तो थे और हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी दबाव बनाया। मिसाल के तौर पर सेंट्रल प्रोविंस और बेरार के सदस्य रविशंकर शुक्ला ने इस बात पर जोर दिया कि जब एक बार किसी भाषा को संघ की भाषा स्वीकार कर लिया गया है तो इसे लागू करने में देर ना की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण भारत के लोग जल्दी से हिंदी सीख लें वरना वे पीछे रह जाएंगे। हिंदी भाषी क्षेत्रों के सदस्यों की यह लगभग सामूहिक भावना थी। हालांकि इस बहस में जवाहरलाल नेहरू संतुलन की बात बार बार कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी भाषा को थोपा नहीं जा सकता, ऐसा करने की कोशिश करने वाले गलत हैं। हिंदी को लेकर वितंडा करने वालों को उन्होंने समझाने की भी कोशिश की। उनकी कोशिश मध्यमार्ग बनाने की थी। वे मिलीजुली जनभाषा हिंदी हिंदुस्तानी की वकालत कर रहे थे और अंग्रेजी से पूरी तरह छुट्टी पाने की सोच का भी विरोध कर रहे थे। आखिरकार संविधान में अनुच्छेद 343 को शामिल कर लिया गया कि संघ की राजभाषा देवनागरी में लिखी गई हिंदी होगी और उसमें अंक रोमन में लिखे जाएंगे। साथ में अंग्रेजी में भी काम करने के लिए 15 साल की मोहलत दी गई। क्योंकि उस समय तक हिंदी ढंग से विकसित नहीं हुई थी और ना ही इसका ढंग से प्रसार हुआ था, इसलिए हिंदी को विकसित बनाने और इसे प्रसारित करने का अतिरिक्त जिम्मा भी सरकार पर डाल दिया गया। इसके लिए संविधान में अलग से धारा 351 को जोड़ा गया जो कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तब तक हिंदी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी और ना ही इसमें एकरूपता थी। जिस हिंदी को हम लोग आज स्टैंडर्ड हिंदी के रूप में जानते हैं वे देश के छोटे हिस्से में ही बोली जाती थी। स्टैंडर्ड हिंदी का भौगोलिक विस्तार उस समय तेलुगु या बांग्ला भाषा की तुलना में कम ही था। उत्तर भारत में कई भाषाएं थीं और हैं जिनका हिंदी से स्वतंत्र अस्तित्व था। उनमें से मैथिली और डोगरी को बाद में स्वतंत्र भाषा के तौर पर संविधान में जगह भी मिली। भोजपुरी भी अपना अधिकार मांग रही है। इसके अलावा अवधी, ब्रजभाषा, कुमाऊनी, गढ़वाली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, मगही, मेवाड़ी, निमाड़ी, वज्जिका, हरियाणवी जैसी भाषाएं स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। इन सबको मिलाकर ही कृत्रित रूप से एक विशाल भाषा हिंदी का निर्माण हुआ है। इन भाषाओं में से कई ऐसी हैं जिनमें आपस में सहज संवाद नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक मिथिला भाषी सहजता से कुमाऊनी बोलने वाले व्यक्ति के साथ संवाद नहीं कर सकता। प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट में असहमति की राय रखते हुए राज्यसभा सांसद और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे पी सुब्बारायन ने हिंदी की इस कमजोरी का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जो लोग पूरी तरह विकसित और 1000 साल से ज़्यादा लंबी विरासत वाली बंगाली, असमिया, ओडिया, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी जैसी भाषाएं बोलते हैं वे राजभाषा के बारे में लाई गई नीति को स्वीकार करने में असुविधा महसूस करते हैं, खासकर तब जबकि ये जबरदस्ती ला दी जा रही है। हिंदी में एक रूपता लाने के लिए सरकार की ओर से शुरुआती वर्षों में कई स्तरों पर प्रयास किए गए। एक जैसी हिंदी के टेक्स्ट बुक देश भर में पढ़ाने की शुरुआत हुई। हिंदी की एक रूपता लाने में फिल्मों ने भी भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग और शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय जैसी कई संस्थाएँ बनी जिन्हें हिंदी को विकसित करने, उसमें एक रूपता लाने और उसका प्रचार प्रसार करने का जिम्मा और बजट सौंपा गया। 1955 से केंद्र सरकार अहिंदी भाषी कर्मचारियों को हिंदी सिखाने की योजना चला रही है। 1960 के राष्ट्रपति के आदेश से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी, केंद्र सरकार के विभाग हिंदी दिवस मनाते हैं और ये एक सरकारी आयोजन होता है। केंद्रीय कानून मंत्रालय का भी एक राजभाषा विभाग है जिसका मुख्य काम सभी विधेयक और कानूनों का हिंदी से अनुवाद करना है। जाहिर है कि सरकार के कंधों की सवारी करते हुए हिंदी ने अपनी विकास यात्रा की है। वहीं हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी और भारतीय भाषा के विकास और प्रचार के लिए केंद्र सरकार इस तरह के प्रयास नहीं करती। सरकारी संचार माध्यमों ने भी हिंदी के प्रसार में भूमिका निभाई। रेडियो और दूरदर्शन दोनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहा है। शुरुआती वर्षों में प्राइवेट चैनल भी नहीं थे। ऑल इंडिया रेडियो की प्रोग्रामिंग में हिंदी को प्राथमिकता दी गई। दूरदर्शन का तो लंबे समय तक सिर्फ नेशनल चैनल ही था और पूरे देश के लोग चित्रहार, रंगोली, हम लोग, रामायण, महाभारत आदि हिंदी कार्यक्रम देखते थे। दूरदर्शन ने उस दौर में नियमित हिंदी फिल्मों का भी खूब प्रसारण किया। इस तरह हिंदी वहाँ पहुँची जहाँ वह आज है। हिंदी का अखिल भारतीयता एक बनाई हुई चीज़ है। अब हिंदी को धर्म की राजनीति का सहारा भी मिल गया है। भाषा विवाद में हिंदी अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी है। द प्रिंट पॉड सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।